ओम शांति। खुशी हमारा बहुत बड़ा खजाना भी है और खुराक भी। ये खुशी का खजाना कौन लूट ले जाते हैं, इस पर गहरी बातें आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप अपने को देखेंगे और अपने उन चीजों को चेंज करेंगे जो हमारी खुशी को हमसे छीनते हैं, तो सचमुच बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बातें बहुत छोटी होती हैं। पहला संकल्प हम करें, बातें छोटी हैं, मेरा खुशी का खजाना बहुत बड़ा है। ये जीवन का सार है, ये जीवन का टॉनिक है, ये ब्रेन का नॉरिशमेंट है, खुराक है ये। इसलिए कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं। ये शरीर के लिए भी खुराक है, परंतु सबसे बड़ी खुराक है मनुष्य के मस्तिष्क के लिए, उसके दिमाग के लिए। जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, जो व्यक्ति चिंताओं में रहता है, जो परेशान रहता है, जो बैड फीलिंग में रहता है, जो भय में रहता है, उसकी ब्रेन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, चिंतन शक्ति नष्ट हो जाती है, उसके विचार महान नहीं होते, वो अपने में एक अभाव महसूस करेगा। यदि हम कहें कि थोड़ा सा ये बात लिखो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो खुशी में रहना, इसको हम अपना लक्ष्य बना लें। सभी मेरे साथ चिंतन करें, मुझे खुश रहना है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ये बातें तो जो आई हैं वो जाने वाली हैं, ये सदा नहीं रहेंगी। लेकिन संकल्प करो, ये जो जाने वाली बातें हैं, इनसे मुझे अपनी खुशी को जाने नहीं देना है। खुशी मेरी अपनी स्थायी चीज है, वो मेरी संपदा है। बातें तो रोज कितनी आती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि ये जो विश्व ड्रामा का खेल है, ये गतिमान है, ये रुक नहीं रहा, ये निरंतर चल रहा है। आप देख लें, सूरज भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है, धरती भी चल रही है, मनुष्य भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहे हैं, दिन रात का चक्र भी अविनाशी रूप से चल रहा है। कब से शुरू हुआ होगा कोई सोच सकता है? सृष्टि का चक्र भी इस तरह चल रहा है, इसे हम ड्रामा कहते हैं। तो इसमें कुछ भी ठहर नहीं रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जाने दो जरा, पकड़ो नहीं। पकड़ने का अर्थ है उन बातों पर गहन चिंतन न करो, उनको लेके न बैठ जाओ। अगर उन बातों को आप लेकर बैठ गए तो रुक गया और आपकी वो खुशी को खाने लगेगा। जब आप उसे रोकेंगे तो आपसे वो कुछ लेगा जरूर, आपकी खुशी को ले जाएगा। तो हमें जाने देना है, अपनी खुशी को बातों के कारण नष्ट नहीं करना है। बातों की वैल्यू बहुत थोड़ी होती है। चिंतन करें इसी संबंध में, जो बातें हमारे सामने आई हैं, किसी ने हमें कुछ कहा है, उनकी वैल्यू कितनी होती है? कभी कभी तो नेग्लिजिबल, एक पैसे की बात नहीं होती, और हम अपनी करोड़ों की खुशी को नष्ट कर देते हैं। चिंतन करें, सोचें, तो क्या हम अपने 10 रुपए के अकाउंट को ठीक करने के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको जाने देंगे। अपने को ऐसा हल्का कर दो कि बहुत सारी बातें आएंगी, चली जाएंगी, हम कलयुग के अंत में हैं, यहाँ वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं, यहाँ सभी लोग हमारे फ्रेंड नहीं होंगे, यहाँ सभी लोग हमें अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, भिन्न भिन्न तरह का ये संसार है। हमें अपनी मनोस्थिति को प्रसन्न रखना है। प्रसन्नता हमारी पर्सनैलिटी है, भगवान ने ये बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए। संतुष्टता तुम्हारी प्रॉपर्टी है और प्रसन्नता तुम्हारी पर्सनैलिटी है। एक बहुत सुंदर व्यक्ति खुश न रहता हो, मूड ऑफ किए बैठा रहता हो, बात बात में इरिटेट होता रहता हो या भयभीत रहता हो, आप देख लो उसके चेहरे की जो ब्यूटी है, चेहरे का आकर्षण, चेहरे की जो पर्सनालिटी, वो डाउन होती जाएगी डे बाय डे। और एक व्यक्ति कम सुंदर है लेकिन वो बहुत प्रसन्न रहता है, उसका चेहरा खिला हुआ होगा, सबको आकर्षित करेगा। तो हम सभी अपनी खुशी को बढ़ाते चले। बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इसे हमें छोटी बातों से नष्ट नहीं होने देना है। मेक योर मेंटेलिटी दिस वे, ये बहुत बड़ी चीज है। चीजें आएंगी जाएंगी, कर्म अच्छे होंगे नहीं होंगे, लोग भी ऐसे वैसे मिलते रहेंगे। अब एक सुंदर बात की ओर हम ले चल रहे हैं, गहरी बातें हम कर रहे हैं, तो गहरी बात सुने। मुझे बहुत पहले ही ये बात मिल गई थी और मुझे बहुत काम आई। हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमारी खुशी चली जाती है। दूसरों के उसमें भी विशेष रूप से अवगुण देखेंगे तो खुशी चली जाएगी। एक व्यक्ति को देखेंगे, ये हमसे गलत करता है, ये हमें डिफेम करता है, ये हमसे ईर्ष्या रखता है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता, खुशी चली जाएगी। तो बहुत अच्छी बात मिली थी हमारी दादी जान की, जो अब नहीं है, कहा करती थी, हम छोटे थे और हमने उनसे ये चीजें बहुत अच्छी सीखी, अवगुण दूसरे का नुकसान हमारा। एक व्यक्ति में अवगुण है, हमने उसको देखा, व्यक्ति बड़ा टेढ़ा चलता है, बड़ा अहंकारी है, या बड़ा गुस्सा करता है, व्यर्थ की बातों में ही रहता है, और सोचते ही हमारी खुशी नष्ट हो गई। तो नुकसान हमें हुआ, मुसीबत हमारी हुई, उसका अवगुण तो उसके पास ही रह गया। ऐसा तो नहीं ना हमने चिंतन करके उसको अवगुण से मुक्त कर दिया। हम चिंतन करें, हमारा क्या लेना देना, हमें अपने को देखना है। दूसरों को देखते देखते तो युग बीत गए, अपने को देखने का समय आया है, मौका मिला है हम अपने पे दृष्टि डालें, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानें, योग्यताओं में विकास करें, नई योग्यताओं का आह्वान करें। हम कर सकते हैं ये सब चीजें, तो हम दूसरों को नहीं देखेंगे। दूसरों को जब हम देखते हैं तो दूसरी चीज भी उभर कर सामने आती है, परचिंतन। और परचिंतन पतन की जड़ है, परचिंतन खुशी के लिए बड़ा घातक है। खुश रहना है तो स्वचिंतन ही करना होगा। सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, बहुत ऊंचाई पर जाना है, तो स्वचिंतन ही करना होगा, अपने को ही देखना होगा। जिंदगी में कुछ विशेष करना है किसी भी फील्ड में, चाहे आप एक वैज्ञानिक हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आप एक अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे एक पोएट हैं। देखिए, ये सभी लोग दूसरों को नहीं देखते। अगर ये लोग भी ईर्ष्या द्वेष में रहेंगे, अगर ये लोग भी परचिंतन करेंगे, तेरा मेरा करेंगे, तो इनकी क्षमताएं डाउन होती जाएंगी। एक वैज्ञानिक को बहुत अधिक स्थिर चित्त होना होता है, अपने में खो जाना होता है, अपने रिसर्च पर पूरा कंसंट्रेट करना होता है। हमारा तो योग अभ्यास है, हम तो अपने जीवन पर रिसर्च करते हैं, हम तो अपने वैज्ञानिक स्वयं हैं। बहुत सारी चीजें नई क्रिएट करते हैं, हम नई चीजों को जानना चाहते हैं हम, तो हमें पर चिंतन नहीं करना है। बहुत अच्छी तरह चिंतन कर लें, पर चिंतन से क्या मिलेगा? जिस व्यक्ति का हम पर चिंतन कर रहे हैं, क्या उसको पता है? जिस व्यक्ति का पर चिंतन कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ चेंजेज आएंगी? जिस व्यक्ति का पर चिंतन हम कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए? क्या हमारे लिए वो लाभप्रद है? नहीं। ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, इस संसार के खेल में सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो, हमारा अलग सब्जेक्ट है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, आजकल भी वही होगा, हमारे समय में वही था, तो अच्छे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते कौन स्टूडेंट थर्ड क्लास है, ये पढ़ क्यों नहीं रहा, ये बुरे संग में क्यों है, ये अपना टाइम क्यों वेस्ट करता है, ये क्लास अटेंड क्यों नहीं करता। हम कभी नहीं सोचते, उसका काम वो जाने, फेल होने वाला है, थर्ड क्लास आने वाली है, पछताएंगे आगे चलकर। हमें तो जो कुछ करना है उस पर ही हम फोकस करते हैं ना, तो हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने लिए रखा करता था जब मैंने अपने परचिंतन को समाप्त किया, वो ये कि एक विज्ञान का स्टूडेंट कभी भी ये नहीं सोचता मैं कॉमर्स की क्लास में तो जाकर बैठूं देखूं क्या पढ़ा रहे हैं, या मैं हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है उसमें जाके बैठूं देखूं हिस्ट्री भी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कोई नहीं करता, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम भी अपना मन बना लें, अपने को ट्रेंड कर दें, परचिंतन मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जब तक ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तक भगवान भाग्य बांट रहा है, जब तक परमात्म सुख लेने का स्वर्णिम अवसर हमें मिल रहा है, ये परचिंतन हम नहीं करेंगे। अपने से बातें करें, अपने से बातें करने से ही हम इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। सारा संसार परचिंतन ही तो कर रहा है, तेरी मेरी में ही तो लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, हमें नहीं लगना है। हमारे लिए एक सुंदर अवसर मिला है, कल हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, कल हमें संसार से जाना पड़े, कल और कुछ बुरे दिन आ जाएं, जब हम कुछ भी ना कर पाए, तो उससे पहले ही हमें अपने को ईश्वरीय खजानों से भरपूर कर लेना चाहिए। पर चिंतन तो एक लीकेज है जिससे हमारी शक्तियां बहती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे खजाने नष्ट होते रहते हमें पता भी नहीं चलता है। आइए हम इस चीज से बिल्कुल ही मुक्त हो जाएं। नेक्स्ट गहरी बात हम ले रहे हैं, दूसरों को देखना, परचिंतन करना। अब है ईर्ष्या द्वेष, राग भी इसी से जुड़ता है, राग माना आसक्तियां, अटैचमेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बहुत चीजों में, उसको राग कहते हैं, लिप्त हो जाना कहीं भी, ये राग है। तो ईर्ष्या, इसका भी फील्ड बहुत बड़ा है, और आधा संसार ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलता है, शायद आधा मैंने कम कहा, 80% भी कह सकते हैं। कोई लोग इसके बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं, लोग कहते हैं नारी जाति ईर्ष्या का ज्यादा शिकार हुई है, परंतु नारी शिव शक्तियां भी तो हैं, वो दूसरों को ईर्ष्या की अग्नि से बचाने वाली भी तो हैं। अपने स्वरूप को जागृत करो। तो हमें दो चीजें करनी है, न किसी की ईर्ष्या से अपने कदमों को रोकना है, अपनी खुशी को गुम करना है, न किसी से ईर्ष्या करनी है। कोई आगे बढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ रहा है कोई अपनी योग्यताओं से, अपने परिश्रम से, मेहनत कर रहा है वो व्यक्ति, हम भी वैसा ही करें तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हम दूसरों से ईर्ष्या करके अपनी प्रगति को भी क्यों रोक देते हैं? क्या हमारी ईर्ष्या उसको आगे बढ़ने से रोक सकती? हो सकता है वो हमारी ईर्ष्या से अप्रभावित रहे। तो मैं एक बात बहुत अच्छी सबको कहा करता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सुंदर सूक्ष्म साइकोलॉजी है। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है बहुत ज्यादा, चाहे धन उसका वृद्धि को पा रहा है, चाहे उसका बिजनेस वृद्धि को पा रहा है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, चाहे उसने कंपटीशन दिया हो, फटाफट सफल हो रहा है, वो आईएएस बन गया है, हम उसको एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएशन, ध्यान दे कितनी सुंदर बात है। देखो, व्यक्ति खुश होगा, हमारे और उसके बीच में प्यार बढ़ेगा, वो व्यक्ति हमें बहुत लाइक करेगा अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं। अब गहराई से सोचेंगे सभी, अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं तो हम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, वो तो हो सकता है हमारा फ्रेंड रहा हो, हम उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलताओं से ईर्ष्या कर रहे हैं। और याद रखेंगे, जिससे हम ईर्ष्या करेंगे वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो क्या सफलता हमारे द्वार खटखटाएगी? क्या सफलता हमारे चरणों में आएगी? हम तो उसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हम दूर हो जाएंगे सफलता से। इसलिए अपनी मेंटलिटी बना लें, अपनी नेचर बना लें, जो आगे बढ़ रहे हैं मन से भी अप्रिशिएट करना, दिखावे के लिए नहीं, कि देखो ये व्यक्ति कितना भाग्यवान है, जरूर इसने अच्छे कर्म किए हैं, जरूर इसकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, जरूर ये बुरे संग से मुक्त रहा है, जरूर इसने मेहनत बहुत की है, तब सफलता इसके चरणों में आती है। जो काम करता है, जहां हाथ लगाता है, मिट्टी भी सोना हो जाती है। मन से भी अप्रिशिएट करें, देखा देखो इसका परिणाम। तो हमें किससे ईर्ष्या नहीं रखनी है। ईर्ष्या द्वेष अग्नि है जो हमारी खुशी को छीनते हैं। बिना मतलब बैठे बैठे हम अपनी खुशी को नष्ट करते रहते हैं। खुशी में जैसे तिल ही लगा देते हैं, जल के नष्ट हो जाओ। दूसरा आगे बढ़ता जाएगा, हम पीछे हटते जाएंगे। Bring a change in your attitudes। दूसरी बात, कोई हमसे ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करने बस। कई लोग बहुत उल्टे सुलटे काम करते, आपकी उल्टी सुलटी कंप्लेंट कर सकते हैं वो आपके बड़ों को। आप ऑफिस वर्कर हैं, आपके सीनियर ऑफिसर्स को आपकी कंप्लेंट करेंगे, झूठी मूठी बातें फैलाएंगे, आपके प्रोग्रेस के द्वार बंद करेंगे, आपको रोकना चाहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ा इतराने लगा है, इसको रोको। ग्रुप भी बना सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन याद रखना है, हमें बढ़ाने वाला है स्वयं भगवान, रोकने वाले हैं मनुष्य। किसकी ताकत ज्यादा है, विश्वास कर लो। भगवान का हमने हाथ पकड़ा है, उसने भी हमारा हाथ पकड़ लिया है। जिसको वो आगे बढ़ाना चाहे, उसको संसार की कोई शक्ति रोक टोक नहीं सकती है। एक मेंटलिटी बनाए अपनी, कोई आपका एक द्वार बंद करता है, करते हैं लोग, दीवारें खड़ी कर देते हैं, आपके लिए दो द्वार खुले हुए हैं, उन्हें ढूंढ लेना। आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये क्वेश्चन भी नहीं रखना है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैं तो इन्हें सदा कोऑपरेट करता हूँ, मेरे इनके संबंध तो बहुत अच्छे हैं, जब मैं इनके सामने आता हूँ तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, पीछे गड़बड़ करते रहते हैं, छुरा भोंकते रहते, ये भी नहीं सोचे। संकल्प कर दें, हमें भगवान आगे बढ़ा रहा है, उसने एक द्वार बंद किया है ना, दो खुले हुए हैं, बस उन्हें ढूंढ लें। रास्ता दिखाने वाला सुप्रीम है हमारे साथ। अपनी मेंटलिटी ऐसी बनाएं और आप ये पाएंगे, यदि आप अपनी मनोस्थिति नहीं बिगाड़ेंगे तो रास्ता आपको जल्दी मिल जाएगा। और रास्ता ऐसा अच्छा मिलेगा जो पहले से कहीं अच्छा सुंदर हो, आपको ऊंचाई पर ले जाने वाला हो। मैंने बहुत लोगों को देखा, स्वयं को भी देखा, जिनके मार्ग में जितनी बाधाएं आई और वो अचल अडोल रहे, उन्होंने नए नए द्वार बनाए, नए नए द्वार ढूंढे, वो तेजी से आगे निकलते चले गए और रोकने वाले देखते रह गए। रुकता मनुष्य अपनी कमजोरियों से है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब तक हम नहीं रुकना चाहेंगे, संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। बिलीव इट, सोच लो अच्छी तरह, क्या मैं राइट हूँ। रुकता मनुष्य अपनी कमजोरियों से है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। परिस्थिति आएंगी, चैलेंजेज आएंगे, दीवारें खड़ी की जाएंगी, लोग आपका मार्ग रोकेंगे, आपकी ग्लानी करेंगे, लेकिन याद रखो, रुकना नहीं है। रुकने वाले चाहे हजार हो, आगे बढ़ाने वाला एक सर्वशक्तिवान है। ऐसी दृढ़ता यदि हम अपने मन में रखेंगे तो ये ईर्ष्या द्वेष हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। और जैसे आजकल कहा जा रहा है सब तरफ, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, इन चैलेंजेज को, इन बुरी बातों को अपने लिए अवसर बना लो। एक मार्ग बंद हुआ, दूसरी योग्यताएं अपने अंदर बढ़ा लो। मान लो आप बहुत अच्छा भाषण करते हैं और आपकी ईर्ष्या द्वेष के कारण, आपसे ईर्ष्या द्वेष है लोगों को, तो लोगों ने आपकी शिकायतें की, आपके जो अवसर थे उन्हें बंद करा दिया, कहा भाषण नहीं करना है। आप परेशान ना हो, आप दूसरा मार्ग ढूंढ लें। हो सकता है वो मार्ग बंद होने से आप अपने को महान योगी बना लें, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता। जिसमें कोई बाधा है ही नहीं, वो आपकी अपनी चीज है, आंतरिक चीज है, और उस योग के बल से आपके अंदर नई नई योग्यताएं जागृत हो जाएं, आपको सुंदर लिखने की कला आ जाए, आप लिखने लगें, आपके लेख संसार को प्रेरित करने लगें, और आपको नए नए अवसर प्रदान होने लगे जहां तहां से। इसलिए रुकना नहीं है, अपने को निराश नहीं करना है, अपनी खुशी को खोना नहीं है। मेरे पास इसके बहुत अनुभव है, 50 तो होंगे। एक मार्ग बंद हुआ, दूसरा खुला था, पहले ही खुला हुआ था। मैं सोचा इस मार्ग का बंद होना तो बड़ा कल्याणकारी था, अगर वो मार्ग बंद न होता तो हम नए मार्ग के बारे में सर्च ही न करते, हम अपनी योग्यताओं को ही न बढ़ाते। वो मार्ग बंद हुआ, फिर तीसरा मार्ग खुला था, सुंदर अवसर और मिले। तो अवसर देने वाला हमारा सुप्रीम फ्रेंड है। हम मनुष्यों की ओर देखना छोड़ दें, मनुष्यों की ओर देखेंगे कोई हमें आगे बढ़ाए, कोई हमें अवसर प्रदान करे, अपॉर्चुनिटी दे, हमारे बड़े हमारे लिए ये करें, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने को योग्य बनाते चलो, अपनी खुशी को बढ़ाते चलो, अपनी मानसिक स्थिति को बहुत उन्नत करते चलो, और देखो अवसर, आपको अवसर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अवसर आपके द्वार पर आने लगेंगे, अवसर आपको ढूंढने लगेंगे। कहाँ है वो योग्य व्यक्ति जो सबको फायदा पहुंचा सकता है? तो इस तरह कोई आपसे ईर्ष्या करे, उल्टी सुलटी शिकायत करे, हमें लक्ष्य रखना है, हमें अपना मन बनाना है कि उस व्यक्ति के प्रति भी हमारी भावनाएं अशुभ न हो। बाबा तो हमें कितना ऊंचा उठाते हैं, देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, रावण से भी बड़ा कोई तुम्हारा शत्रु हो, रावण को तो सबसे बड़ा दिखाते हैं, तो भी तुम्हें उसके लिए अपनी भावनाएं बदलनी नहीं है, तुम्हें तो सबको शुभ भावनाओं का दान देना है। कितनी पावरफुल बात कही, कोई तुम्हारी 100 बार ग्लानी करे, तुम्हें 100 बार बद्दुआएं दे, तुम बार बार उसे दुआएं देते चलो, उसकी बद्दुआएं भी कटती जाएंगी, तुम्हारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। तो आइए हम अपने जीवन को खुशी का भंडार बनाएं। हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम बहुत खुश होंगे तो संसार खुश होगा। जैसे संसार की बगिया हरियाली से, खिलते हुए पुष्पों से महकने लगेगी, हर एक का जीवन खिलखिलाने लगेगा। हमारी खुशी केवल हमारे लिए नहीं है, हमारी खुशी इस पूरे कल्प वृक्ष के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक है, बहुत बड़ा आधार है हम इस सृष्टि के। तो अपने से इन गहरी बातों पे चिंतन करेंगे और सदा खुश रहने का एक सुंदर प्लान बनाएंगे, सवेरे उठते ही अपने को खुशियों से भर देंगे। ओम शांति।